स्थान ब्रह्म मंदिर ढाका पूर्वी बंगाल, बुधवार 19 जनवरी 1887। संतानवे महोत्सव का उद्बोधन। अति प्राचीन काल में पूजा करने के पहले बोधन का अनुष्ठान होता था। बोधन का अर्थ प्रत्यक्ष अनुभव का बोध या ज्ञान है। उस समय के विवरण से ज्ञात होता है कि वे विशेष रूप से या कोई घटना विशेष के उपलक्ष्य में जब पूजा कराना चाहते थे, तब हमेशा पूजा के पहले एक महाशक्ति महाविष्णु के निकट उपस्थित होते थे और बोधन करते थे। एक महाशक्ति ही सारे चराचर की सृष्टा, कर्ता, कारण, प्राण, सबका जीवन और आश्रय है। वे सर्वत्र विराजित हैं, पर उनका प्रकाश कहाँ है? कल्पना में नहीं, साक्षात प्रत्यक्ष आविर्भाव कहाँ है? जिनकी इच्छा शक्ति से अखिल ब्रह्मांड चल रहा है, उन एक अद्वितीय पुरुष का बोधन करके प्रत्यक्ष प्रकट न कर लेने तक वे पूजा नहीं करते थे। शस्य वृक्ष लता सभी में अग्नि है, पर जब तक अग्नि प्रकट न कर ले, अग्नि का बोधन न हो, तब तक उससे कोई कार्य साधित नहीं होता है। जल भी सर्वत्र वायु में व्याप्त है, पर जब तक जल का बोधन न हो, उस वायु स्थित जल में कोई कार्य नहीं होता। मिट्टी में रस है, पर उसका प्रकाश न हो तो वृक्ष लता को कोई लाभ नहीं मिलता। उसी तरह सर्वत्र सर्वभूत में, प्राण रूप में, जीवित रूप में वही सृष्टा, त्राता, विधाता, पालनकर्ता पर ब्रह्म विराजमान है। वे आदिशक्ति पराशक्ति कहाँ नहीं है, परंतु उनका बोधन कहाँ होता है? यहाँ वे हैं, कहने से नहीं होता, बोधन आवश्यक है। इसलिए पूर्व काल में सब कोई एकत्रित होकर एक साथ प्रार्थना द्वारा बोधन करते थे। जब तक वे प्रकट न हो जाते, उनकी वाणी न सुन लेते, इष्टदेव पधार गए हैं यह न देख लेते, तब तक पूजा नहीं करते थे। बोधन तब एक विशिष्ट कार्य हुआ करता था। प्रत्येक घर में प्रत्येक प्रतिदिन किसी विशेष उपलक्ष्य में बोधन किया जाता था। अभी केवल दुर्गा पूजा के पहले ही बोधन सुना जाता है। हम जिनकी उपासना करने आए हैं, वह महाशक्ति वस्तुतः चराचर अखिल ब्रह्मांड में विद्यमान है। सचमुच यहाँ जल, अग्नि, वायु, भूमि, नभ, चराचर के सर्व स्थान में, मेरी रसना में, अस्थि मज्जा में, रक्त कण में, चारों ओर भीतर बाहर सर्वत्र परिपूर्ण रूप में विद्यमान है, पर उनका बोधन कहाँ हो रहा है? हम यह सुनकर, पढ़कर संस्कार मात्र से केवल कहते हैं। बोधन का अर्थ है सत्य बोध होना। बोधन का अर्थ है सत्य बोध होना। स्पष्टता उनके भाव ज्ञान हृदयंगम न हो तो पूजा नहीं हो पाती। जिस पूजा से पाप ताप दूर होते हैं, हृदय पवित्र होता है, पृथ्वी स्वर्ग बन जाती है, मनुष्य देवता बन जाता है, वैसी पूजा बिना बोधन के नहीं होती। चाहे बाहरी उपकरण, साज सज्जा, आयोजन कितना भी करे, यथार्थ पूजा नहीं होती। सभी एक ही प्राण हो, उन्हें पुकारें, एक भाव से उन्हें चाहें, तभी यह पूजा होगी। जब तक यह भाव प्रकट न हो, पूजा नहीं होती। परोक्ष रूप में पूजा नहीं होती। यदि हमारा प्रयोजन वास्तविक है, चाह ठीक है, केवल प्रणाली या विधि अनुसार हर साल उत्सव उद्बोधन करना है, इसलिए करते हैं, ऐसा भाव न हो तो बोधन कर साक्षात इष्ट देवता को सम्मुख देख सकेंगे। चारों ओर शरीर के भीतर बाहर वही महाशक्ति प्राण रूप में विराजमान है। वे अंध शक्ति मात्र नहीं है, वे परम पुरुष व्यक्ति सत्य स्वरूप हैं। उनका आसादन तथा अनुभव किया जा सकता है, हृदय में धारण किया जा सकता है। वे आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञानमय, ज्ञानी, सारे जगत के कर्ता, विधाता, समस्त शक्तियों को स्वयं परिचालित कर रहे हैं। ऐसे पुरुष, ऐसी प्रकृति का हम बोधन करते हैं। आज विशेष रूप से उन्हीं पाने के लिए, अपरोक्षानुभूति करने के लिए प्राणों में गहराई तक एकांत की चाह होनी चाहिए, अन्यथा कुछ न होगा। यथार्थ इच्छा हो तो वह पूर्ण होती है, अवश्य होती है। इस कारण सावधान होकर पवित्रता पूर्वक इस कार्य में हम संलग्न होते हैं। सबके हृदय में एक ही आशा, एक ही आकांक्षा जागृत रहे, यही भाव लेकर आज का उद्बोधन हम संपन्न करें। उपदेश। नवद्वीप के राजा कृष्णचंद्र के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। वे अपनी सारी क्षमता लगाकर बड़े ही उत्तम उपकरणों से भव्य आयोजन और समारोह पूर्वक दुर्गा पूजा किया करते थे। हर वर्ष वे ऐसा ही किया करते थे। एक दिन राजभवन के बरामदे में बैठे वे देखते हैं कुछ सुंदरियां स्वर्ण कलशों में पुष्करणी से जल लेने आई हैं। राजा ने उनसे पूछकर जब जान लिया कि वे कैलाश की दुर्गा माँ की सहचरी हैं, राजा ने पूछा, मेरे द्वारा हर वर्ष की जाने वाली दुर्गा पूजा से माँ संतुष्ट तो है ना? दो एक दिन बाद वे फिर आईं। राजा ने फिर पूछा, तब उन्होंने कहा, माँ से आपका प्रश्न पूछने पर वे बोली, कोई राजा पूजा करता है ऐसा तो मुझे स्मरण नहीं है, पर हाँ उस देश में एक दुखी ब्राह्मण मेरी पूजा जरूर करता है और मैं वहां जाती हूं। राजा को यह सुनकर मन में क्षोभ हुआ। वे व्याकुल हो सोचने लगे, मेरी पूजा से संतुष्टि तो दूर, मैं जो पूजा करता हूं माँ उसे भी नहीं जान पाती। उस ब्राह्मण का नाम पता पूछकर दुर्गा पूजा के समय राजा छद्म वेश में उसके घर पहुंचे। देखते हैं कोई आयोजन आडंबर नहीं है, सामान्य फल फूल, मोटा चावल, केले एवं उसकी विभिन्न प्रकार की बनी सब्जी। पर माँ उस वृद्ध को गले लगाकर कह रही है, तुम भी खाओ मैं भी खाऊं। राजा संतुष्ट हुए और ब्राह्मण को पूजा के लिए सब कुछ देने के लिए सहमत हुए। इस कहानी में ऐसा अद्भुत उपदेश और भाव है कि आश्चर्य होता है। कई बार हम बाहर या भीतर के कई दिखावटी उपकरणों का आयोजन करते हैं और सोचते हैं कि वे संतुष्ट होंगे या वे पूजा ग्रहण करेंगे। कई बार इस प्रकार मन में कल्पना करके हम स्वयं को धोखा देते हैं। बचपन में जिस प्रकार फूल चंदन का आयोजन करता था, उसी प्रकार अब भक्ति प्रेम के दिखावटी आडंबर द्वारा भीतर और बाहर के उपकरण से उनकी पूजा करके सोचता हूँ उन्होंने पूजा स्वीकार की होगी। पर यह केवल मन का भाव है। गहराई से सोचना होगा कि हम परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं या संसार के बाहरी यश मान सुख ऐश्वर्य से अपनी ही पूजा कर रहे हैं। प्रतिवर्ष उत्सव करते हैं, आनंद कर रहे हैं, पर वह बाहरी तौर पर करते हैं, आंतरिक भाव से नहीं। एक भाव आया फिर चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वृक्ष से एक शाखा निकले तो पुनः वह भीतर प्रवेश नहीं करती है। उसी प्रकार जो सत्य भाव है वह कभी नष्ट नहीं होता। उसका जितना अंश प्राणों में उपलब्ध करेंगे उतना रह जाता है, उसका रस लिया जा सकता है। इसी उद्देश्य से पुराने ऋषि लोग बोधन किया करते थे। बाहरी आयोजन या आडंबर की प्रथा न थी। गृह की दैनिक पूजा हो या अन्य विशेष घटना के लिए इष्ट देव को आह्वान द्वारा जब तक उनका आविर्भाव प्रत्यक्ष न हो तब तक पूजा नहीं होती थी। बाइबिल, कुरान सब धर्मशास्त्रों में यही प्रमाण है कि उपास्य देवता प्रत्यक्ष पूजा ग्रहण करते हैं। परमेश्वर की यथार्थ पूजा के लिए अनादिकाल से सब देश सब जातियों में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, वृक्ष या किसी शिला के नीचे पूजा के लिए जो आयोजन होते रहे हैं, उनके लिए जो आकांक्षा और व्याकुल भाव रहा है उसको वृथा कल्पना नहीं कहा जा सकता। जिन्होंने भोग दी है वे ही अन्न की भी व्यवस्था करते हैं। मेरे जन्म के पहले माँ के स्तनों में दूध तथा फल मूल आदि उत्पन्न किए हैं। जिन्होंने प्यास लगने पर पानी का सृजन करके रखा है, जहाँ रोक दिया है वहाँ औषधि की व्यवस्था भी उन्होंने की है, और उनके लिए व्याकुलता के भाव की कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं की, ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है। उनके प्रति इतना आकर्षण या चाह क्यों है? वे हमारे कौन हैं? मेरे खोए हुए धन बहुत दिन पहले जो पुत्र मर चुका हो, उसका नाम सुनते ही कैसे वह शब्द हृदय में बीत जाता है, वैसे ही परमेश्वर का नाम लेते ही मेरे प्राणों को वह भेद कर जाता है। इस नाम में क्या मंत्र तंत्र है मुझे मालूम नहीं, परंतु चाहे कुछ भी हो, हरि राम दुर्गा काली खुदा अल्लाह किसी भी नाम से हमारे प्रभु को यदि पुकारें तो वह शब्द ही मेरे प्राण हर लेता है। उन्हें जो चाहो कहो, जल कहो, सूर्य कहो, जो भी कहो, इस ब्रह्मांड को मुझको जिन्होंने सृष्टि किया है उन्हें ही चाहते हैं, मन प्राण उन्हीं के लिए रो उठता है। वे ऐसी क्या वस्तु हैं, वे कौन हैं जिन्हें संसार में ढूंढ कर नहीं पा सकते? कहते तो हैं वे जल में, आकाश में, पृथ्वी में, सर्वत्र हैं, पर प्राणों की व्याकुलता में जल में डूबकर, वृक्ष के पत्ते तोड़कर, हवा में कूदकर, पेड़ के टुकड़े करके, पर्वत पर चढ़कर उन्हें ढूंढते हैं। वे कहाँ हैं, वे कहाँ हैं, कौन बता सकता है वे कहाँ हैं? किसी की भी क्षमता नहीं है। इस प्रकार जब प्राणों में उन्हें पाने की इतनी उत्कंठा हो, तब इसका उपाय भी वे ही करते हैं। भूखे को अन्न, प्यासे को जल की व्यवस्था जब वे ही करते हैं, तब प्राणों में व्याकुलता लेकर वैसे ही वे उसे कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा होता तो मनुष्य जिन निंदा लज्जा घृणा रहने पर भी पागल हो जाता। इस प्रकार की मन की अवस्था जिन्होंने दी है उनके लिए इस व्याकुलता की वर्णना नहीं हो सकती। उन्होंने भूख प्यास में फल, शस्य, जल सब कुछ दिया है, पर इसका भी उपाय कर रखा है। स्तन का दूध यदि तीर्थ में, पर्वत में, पुस्तक में या किसी अन्य व्यक्ति के पास रहता तो मैं जीवित नहीं रह सकता था, पर प्रभु ने ऐसा नहीं किया। जिनके गर्भ से मेरा जन्म हुआ, जिनके रक्त से मेरा शरीर बना, उसी माँ के रक्त से दूध बनाकर माँ के स्तनों में उन्होंने रखा है। मेरे शरीर में रक्त प्रवाहित हो रहा है, जल वायु इनसे भी मेरा निकट का संबंध है। इतना सब जो करते हैं वे मेरे व्याकुल प्राणों को कभी अकेला विनष्ट नहीं होने देंगे। गाय घास खाती है, उस घास को जो दूध बना दे, ऐसा क्या कोई डॉक्टर कर सकता है? घास को दूध कौन बना सकता है? ऐसे जो मेरे प्रभु हैं, ऐसा जिनका कार्य है, वे मेरे व्याकुल प्राणों की भी व्यवस्था अवश्य करते हैं, और वह कहीं दूर नहीं, अन्य ग्रह, सूर्य, नक्षत्र, पर्वत, तीर्थ या दूसरे किसी मनुष्य में नहीं रखे हैं। उन्होंने अत्यंत निकट, बहुत पास में, मेरे अपने प्राणों में ही वह धन रखा है। वे स्वयं वहां विराजमान है। सचमुच की खुदा हो या तृष्णा हो तो उन्हें उसी समय अवश्य पाओगे। परमेश्वर परमेश्वर सभी कहते हैं, अपने सीने पर हाथ रखकर सभी सच सच प्रश्न करो तो सही, मैं भी करता हूं, तुम लोग भी करो। क्या हम केवल उन्हें ही चाहते हैं? देखो हम क्या चाहते हैं। यदि सच में उन्हें ही चाहते हैं तो पाएंगे भी। जब भी चाहते हैं उन्हें तभी पाते हैं, जो चाहते हैं पाते हैं, जिस प्रकार से वे उन्हें चाहते हैं उस प्रकार से उन्हें पाते हैं। उन्हें क्यों नहीं पाएंगे? हमें पागल बनाकर वे रख नहीं सकते हैं। उनके अलावा हमारा और कोई उपाय भी नहीं है, परंतु हम नहीं चाहते हैं। गहराई से आत्म परीक्षण करके देखूं तो पता चलता है वस्तुतः हम उन्हें नहीं चाहते, इसलिए उन्हें नहीं पाते। अंधेरे में अकेले प्रश्न करो, अरे मन तू क्या चाहता है? बोल तू क्या चाहता है? सच सच बता तू क्या चाहता है? सावधान, बहुत बार ठगाया है, अब भी बता क्या चाहता है? ठीक ठीक बता दे क्या चाहता है? साफ कर दे जिससे निश्चिंत हो सकूं। मुख में परमेश्वर परमेश्वर और भीतर कुछ और चाह, और कब तक ऐसे ठगाओगे? ऐसा गहन परीक्षण करने से तब समझ पाएंगे। पर अपनी खबर लेता कौन है? यथार्थ उन्हें ही चाहें तो अवश्य पाएंगे। खोजते खोजते हाहाकार करते हुए देखते हैं पीछे कौन आता है। तुम कौन हो, तुम कौन हो मेरे पीछे? एक बार दो बार देखते देखते उन्हें पहचान लेते हैं। परिपूर्ण मानंदम, सारा ब्रह्मांड आनंद से भर जाता है। उनकी भाषा नहीं, शब्द नहीं है। सोचते हैं क्या क्या कहेंगे। उनकी बातें बहुत कुछ प्रकट करेंगे, पर उस समय अबोध अज्ञान की भांति हो जाता हूँ। उनकी उपमा नहीं है, दृष्टांत नहीं है, तुलना नहीं है, गूंगे के स्वप्न की भांति। जब तक साक्षात प्रत्यक्ष न हो, बोधन न हो, तब तक पूजा नहीं होती है। एक बार परीक्षा करके पकड़ो तो प्राण पागल हो उठते हैं। बिता बातों से क्या तृप्ति मिलती है? वे भाषा नहीं है, केवल कहने के लिए नहीं है, कल्पना नहीं है। कितना कहूं, वे सत्य हैं, सत्य हैं, सत्य हैं। ऐसे देवता, उनके लिए एक बार यदि प्राण व्याकुल हो जाए तो तुरंत निकट आते हैं। जब यथार्थ बोधन होता है तब पूजा आरंभ होती है। हमारे लिए दूसरा उपाय नहीं है। जब तक तुच्छ वस्तुओं पर आसक्ति है, तब तक मुग्ध, बेहोश, नशाखोर की तरह अज्ञान में रहते हैं। क्या करते हैं यह नहीं मालूम, तब हम मनुष्य ही नहीं रह जाते। भूमैव सुखम न अल्पे सुखमस्ति। तुच्छ सांसारिक विषय में तब कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। जब होश में आएंगे तभी मनुष्य बनेंगे। जब होश में आएंगे तभी मनुष्य बनेंगे, तभी वे मेरे अपने होंगे, मेरे होंगे। तब उन्हें छोड़कर नहीं रह सकूंगा। कोई वस्तु मेरी नहीं है, कोई वस्तु मेरी नहीं है, केवल वे ही मेरे हैं। प्राण उन्मत्त सा हो उठेगा, कहाँ हो प्रभु, तुम कहाँ हो प्रभु, दर्शन दो, तुम कहाँ चले गए हो, एक बार प्राण में आ जाओ। तब प्राणों का बोधन होता है, हम उनका प्रत्यक्ष अनुभव कर धन्य होते हैं। तब उनकी शक्ति से दिव्य चेतना पाकर ये लोग परलोक एक हो जाता है। तभी उन्हें प्रत्यक्ष कर हम आनंद कर सकेंगे। यही पूजा है, यही उत्सव है। इस प्रकार उत्सव में उनकी पूजा उपासना करके हम कृतार्थ हो सकेंगे। हे करुणाय, हे दीन बंधु, यही आशीर्वाद दीजिए कि हम तुम्हें प्रत्यक्ष करके पूजा कर सकें। स्थान ब्रह्म मंदिर, ढाका, पूरी बंगाल। उद्बोधन का सारांश। ऐसा कहा जाता है कि चातक पक्षी कभी भी पृथ्वी का जल नहीं पीता है। वह ऊर्ध दिशा की ओर ताकता हुआ स्फटिक स्वाति नक्षत्र के जल की आशा में आकाश की ओर देखता रहता है। प्यास से प्राण निकल जाए तब भी वह पृथ्वी के जलाशय का जल ग्रहण नहीं करता। स्फटिक जल के अभाव में वह प्राण भी त्याग देता है, पर इस नीचे के साधारण जल से उसे तृप्ति नहीं होती। यह सत्य है या मिथ्या है मैं नहीं जानता, पर इससे एक उत्तम आध्यात्मिक संदेश प्राप्त करता हूँ। आत्मा के स्वभाव का परिवालोकन करके देखा जाता है कि वह भी पृथ्वी के सुखों के प्रति सर्वदा आसक्त और तृप्त नहीं रह सकता है। चातक की भांति वह भी ऊर्ध्वमुखी होकर परमेश्वर के प्रेम सुधा के लिए लालायित रहता है। जब तक वह उसे प्राप्त कर उनका पान न कर ले, उसकी तृप्ति नहीं होती है। यदि हम इस पृथ्वी के ही भौतिक सुखों में, आसक्ति में, कामना वासनाओं में ही केवल तृप्त रहें, तो हम अपनी आत्मा की प्रकृति का विनाश कर डालेंगे। पर ऐसा होने का नहीं, हम इन कामना वासनाओं में मग्न होकर बहुत दिन बिता लेते हैं, यह सत्य बात है, परंतु सदैव हर समय इसी में तृप्त नहीं रह पाते। कभी न कभी चाहे इहलोक में या परलोक में इन्हें असार जरूर समझेंगे। संसार के सब सुखों के सार परात्पर परमेश्वर की ओर प्राण दौड़ेंगे ही दौड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी हो, हम अभी से उनकी ओर से ही चल सकें, इसलिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं संसार का कोई भी जल नहीं पीऊँगा, बल्कि चातक की तरह ऊर्ध्वमुख होकर उनके कृपा जल के लिए आस लगाए रह सकूं। आप सब आशीर्वाद दीजिए, मैं वह जल पाकर धन्य हो जाऊं। उनकी कृपा पर निर्भर होकर हम उनकी ही उपासना में नियुक्त होए। स्थान ब्रह्म मंदिर, ढाका, पूर्वी बंगाल, उपदेश। एक बार एक सज्जन ने ढाका कचहरी में कुछ लोगों को दुखी बैठे देखा। ये लोग कुछ दिन ढाका जेल में कैदी थे। उस व्यक्ति ने उनसे पूछा, क्या सब तुम सब कहाँ जाना चाहते हो? उनमें से किसी ने कहा श्रीहट, किसी ने कहा चट्टग्राम इत्यादि। तब उसने फिर से पूछा, तुम लोग बहुत चिंतामग्न क्यों हो? तुम सब कैद से मुक्त हो गए हो, अब घर जाकर स्त्री पुत्र बंधु बांधवों से मिलोगे, तुम्हें तो आनंदित होना चाहिए, फिर तुम दुखी क्यों हो रहे हो? उन्होंने कहा, महाशय, हम अब तक जहाँ थे वह स्थान हमारे लिए अच्छा था, हमें अब कोई नहीं पहचानता है, हमारा घर कहाँ है रास्ता भी नहीं जानते, अब कहाँ जाएं? ना हमें कोई जानता है, ना हमारे परिवार, ना ही मित्रों का कोई ठीक से पता है, इस अवस्था में कौन हमें कुछ खाने को देगा, अब हम क्या करें? इन्हीं की तरह हम भी एक प्रकार से कैदी ही हैं। वे जिस प्रकार कैद से मुक्त होकर घर जाने में आनंदित न होकर दुखी होते हैं, वैसे ही मृत्यु काल में हम यहाँ से छूटकर परलोक जाएंगे, इस विचार से खुश न होकर कितना रोते हैं। हम अपनी माँ के पास जाएंगे, वहाँ कितने इष्ट मित्र परिजन मिलेंगे, उनसे मिलकर कितना आनंद होगा, यह सोचकर आनंद न पाकर उल्टे हम कैदियों की तरह कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, सोचकर चिंतित एवं दुखी होने लगते हैं। इसलिए कहता हूँ, हे मित्रों, मृत्यु निकट है, सर्वदा नाम जपो, अब सतर्क हो जाओ, उनसे अपरिचित मत बने रहो। बंधुओं, बार बार कहता हूँ, देखो अपने लिए क्या संचय किया है। मृत्यु निकट है, उस समय और समय भी न मिले, इस कारण अभी से नाम जप शुरू कर दो, माँ से परिचय कर लो, परलोक प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा, यह मेरी माँ है, यह मैं देख पा रहा हूँ, ऐसी अवस्था होनी चाहिए, अब और देर न करो, नाम करो। हम सभी यह उच्चारण करेंगे, आनंदम ब्रह्मनो विद्वान न विवेति कूतश्चन। हमारी माँ है, यह केवल कहने से नहीं होगा, अपनी उस माँ को हमने देखा है क्या, उसे अनुभव करना होगा। माँ, मेरी माँ बड़ा मधुर नाम है, पर क्या यह केवल कहने के लिए है? मेरी माँ यह बात पड़ी हुई बात नहीं, माँ साक्षात प्रत्यक्ष माँ, उनसे परिचय होना चाहिए। अपनी माँ को यदि पहचान लेंगे, तब क्या उन्हें भूलकर निश्चिंत रह पाएंगे? मेरी माँ प्रत्यक्ष है, वास्तव में एक लक्ष्य होकर उन्हें पुकारने पर वे बिना मिले रह नहीं सकती हैं। जिनकी दया बिना एक पल भी हम नहीं जी सकते, उन्हें प्राणपन से पुकारने पर क्या वे बिना आए रह सकती हैं? वे कहती हैं, बच्चों, यह लो मैं आ गई। माँ को यदि पहचान गए, तो आंखों से जरा भी ओझल होने पर चिल्लाएंगे, माँ कहाँ गई? तुम इन्हें निहार कर क्या मैं रह सकता हूं? छुटपन में माँ की गोद में बैठकर जब दूध पीता था, तब केवल एकटक उनकी ही आंखों में आंख डालकर ताकता रहता था। वैसे ही मेरी इस जननी की गोद में जाकर स्तनपान करूंगा और उनकी आंखों को अपनी आंखों से निहार कर सुखी होता रहूंगा। मैं केवल पुस्तक में पढ़ी हुई माँ नहीं चाहता हूं। मैं निसंशय होकर कहूंगा, यह मेरी माँ है। यह सब पढ़ सुनकर नहीं कहूंगा। माँ को प्रत्यक्ष देखकर मैं मेरी माँ के पास रहूंगा, मुझे कोई भय नहीं रहेगा। यदि कोई कारागार में डाल दे तब दौड़कर उनसे कहूंगा, माँ मैं आ गया हूं माँ। वे भी दौड़कर आएंगी और गोद में लेंगी। मैं क्या बूढ़े व्यक्ति की तरह निराशा में रहूं? मैं ऐसा रह नहीं सकता। मैं कारागार में पड़ा रहूंगा ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग आशीर्वाद दें, मैं दौड़ कर जाकर कह सकूं, माँ कहाँ हो, माँ पतित पावनी, मैं संसार से आ गया हूं। कारागार से मुक्त होकर आया हूं, अब गोद में स्थान लो माँ। माँ के पास कारागार की सारी बातें बोलने में क्या भय होगा? आप सब आशीर्वाद दीजिए जिसे माँ को पहचान सकूं, कारागार से यह कह सकूं, माँ आ गया हूं। यदि माँ को जान सकूं तो रेशम की कीट की तरह उसका बंधन काटकर माँ के पास भागूंगा। मैं भयभीत हूं, मैं नीच हूं, अपवित्र हूं, यह वास्तविक ही कहता हूं। आप सब आशीर्वाद दें कि मैं हंसते हंसते नाचते अपनी माँ के पास जा सकूं, अपनी आनंदमयी माँ को देखकर प्राण शीतल हो जाएंगे। स्थान ब्रह्म मंदिर, ढाका, पूरी बंगाल। उद्बोधन का सारांश। गुलाब या कमल के फूल कितने सुंदर और मनोहर होते हैं, किंतु उनके पौधे कंटीले व कुत्सित हैं। उसमें कमल का पौधा तो कीचड़ में जन्म लेता है। जिसने केवल सुंदर पुष्पों को ही देखा है पर उनके पौधों का दर्शन कभी नहीं किया है, उन्हें इस पौधों को दिखाकर यदि कहा जाए कि यह गुलाब और यह कमल का पौधा है, वे कहेंगे, ऐसे कटीले कुत्सित वृक्ष में इतने सुंदर कोमल सुगंधित फूल कैसे जन्म ले सकते हैं? जो नित्य सुंदर हैं, जिनके सौंदर्य के कण प्रकार मात्र से सारा विश्व संसार सुंदरता से भर उठता है, वे परम सुंदरतम देवता ही इस कंटकाकीर्ण कुत्सित वृक्ष के भीतर विद्यमान रहकर इन सुंदर फूलों का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार पृथ्वी के लोग जब पापियों के कुत्सित जीवन का दर्शन करते हैं तो वे भी कहते हैं, क्या इनका अपवित्र कुत्सित जीवन फिर से साधु बन सकेगा? पर ऐसा ही होता है। जो सुंदर देवता कुत्सित वृक्षों में रहकर सुंदर सुंदर फूल निर्माण करते हैं, वे ही पापी दुर्गंधमय कुत्सित प्राणों में रहकर प्राण को सुंदर पवित्र बनाते हैं। पापियों को कोई भय नहीं है, पापियों को कोई भी भय नहीं है। एक न एक दिन प्रभु इन मलिन प्राणों को सुंदर पावन अवश्य ही बना लेंगे। हम उन्हीं पतित पावन दीन बंधु दीनानाथ के शरणापन्न होकर उनकी पूजा में पवित्र हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।